अहाना रूपाली जी के षड्यंत्रों से अनजान फोन पर अपनी मम्मी पापा से बात कर रही थी। तभी तेज आवाज के साथ कमरे का दरवाजा खुला और अहाना चौंक कर पलट कर उस ओर देखी। अक्षय के चेहरे के सख्त भाव देखकर उसे कुछ कुछ अंदेशा हो गया कि रूपाली जी अपना मन का जहर उगल चुकी हैं, अक्षय को उल्टी सीधी बातें पढ़ा चुकी हैं और अब एक बार फिर उसे कटघरे में खड़ा किया जाने वाला है। अहाना का चेहरा एकदम भावहीन हो गया। अक्षय के चेहरे के भाव देखकर ही वो समझ गई कि वो उनकी बातों में आ चुका है। उसने बाद में बात करने का कहकर कॉल काटा ही था कि अक्षय की सख्त आवाज वहां गूंज उठी। अहाना, आज आप किसके साथ घर आई थी? मम्मी क्या कह रही हैं? क्या बदतमीजी की है आपने उनके साथ? हमसे क्यों सवाल कर रहे हैं? मम्मी जी ने तो आपको सब बता ही दिया होगा और आपके लहजे से साफ जाहिर है कि आपको उनकी बातों पर विश्वास भी हो गया। फिर हमसे कुछ भी पूछने का कोई मतलब ही नहीं रह गया। अहाना का लहजा सपाट था और चेहरा भावहीन, पर शब्दों में कठोरता झलक रही थी। अहाना का जवाब सुनकर अक्षय के चेहरे के भाव कुछ बदले। अहाना, मम्मी को बीच में मत लाइए, मैंने सवाल आपसे किया है तो जवाब भी आप ही देंगी। शब्दों में अब भी वही कठोरता थी। तंज भरी मुस्कान अहाना के लबों पर ठहर गई। कुछ पल वो खामोशी से उसे देखती रही, फिर रोषपूर्ण लहजे में बोली, सवाल हमसे ही क्यों? आप अपनी लड़की दोस्तों के साथ सारे दिन हॉस्पिटल में रहते हैं, उन्हें घर भी लेकर आते हैं। हमने तो कभी आपसे कोई सवाल नहीं किया, आप पर विश्वास किया। फिर आज अगर हम किसी के साथ घर आ गए तो हमसे सवाल क्यों? फिर भी हम जवाब देते अगर आपने हमसे हमारे पति बनकर सवाल किया होता, क्योंकि तब ये जानना आपका हक था और हमने कुछ गलत नहीं किया था जो हमें कुछ छुपाने की जरूरत पड़ती। पर यहां हमारे सामने आज हमारे पति नहीं, मम्मी जी के बेटे खड़े हैं, जिन्होंने आज फिर बिना हमारी बात सुने हमें गुनहगार ठहरा दिया, कटघरे में खड़ा कर दिया। जिन्हें अपनी माँ की कही बातों पर भरोसा हुआ पर अपनी बीवी पर विश्वास नहीं कर सके। अहाना के शब्दों में गुस्सा और रोष के साथ शिकायत भी झलक रही थी। अक्षय पर रूपाली जी की बातों का जितना असर हुआ था सब एक झटके में खत्म हो चुका था। अहाना के शब्दों ने उसे उसकी गलती का एहसास करवा दिया था। माथे पर पड़ी सिलवटें और चेहरे के भाव उसकी परेशानी जाहिर कर रहे थे। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि अहाना ने उसे कुछ कहने का मौका न देते हुए आगे कहना शुरू किया, जवाब चाहिए था ना आपको, तो दे देते हैं आपको आपके सवालों का जवाब। छुट्टी के वक्त बहुत बारिश हो रही थी, आपको फोन किया था पर आपने उठाया नहीं। अन्वय की बाइक रास्ते में खराब हो गई थी तो वो हमें लेने नहीं आ सकते थे। इतनी बारिश में ऑटो नहीं मिल रहा था और कैब भी नहीं आ रही थी। घर आने का कोई साधन नहीं था, तब हमारे सीनियर सर ने हमें लिफ्ट ऑफर की। हमारे साथ की दो टीचरें और थीं, हम उनके साथ अकेले नहीं आए थे। मम्मी जी को हमने सारी बात बताई थी पर उन्हें हम पर विश्वास नहीं हुआ और हमने उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं की थी, बस उनके सवालों का जवाब दिया था, वो भी अपनी मर्यादा में रहकर। उसके बावजूद उन्हें हम गलत लगे। तो आप बताइए कि क्या करते हम? सारे वक्त वहीं बैठे इंतजार करते रहते या जब उन्होंने हेल्प ऑफर की तो ये कहकर इनकार कर देते कि हमारे पति और ससुराल वालों को हम पर भरोसा नहीं, अगर आपके साथ गए तो हमारे किरदार पर सवाल उठा देंगे, इसीलिए आपके साथ नहीं जा सकते। अगर घर देर से आते तब भी मम्मी जी की आंखों में हम खटकते, अगर उनके सवालों पर चुप रहते तब भी वो हमें 100 बातें सुनाती कि हमने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया, उन्हें अपना गुरूर दिखा रहे हैं, उनकी इज्जत नहीं करते। हमारे लिए इस घर में कोई रास्ता छोड़ा जाता है, हम कुछ भी करें हमें गलत ही ठहराया जाता है। तो ठीक है, आज मान लेते हैं कि हम ही गलत हैं और आपकी मम्मी सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं, उनकी कही एक एक बात सच है और हम गुनहगार हैं। सुना दीजिए हमें जो सजा सुनानी हो, कह दीजिए आप भी हमें चरित्रहीन, क्योंकि हम किसी और के साथ घर आ गए। सुना लीजिए आप भी हमें जैसे दोपहर से मम्मी जी सुना रही हैं। बोल दीजिए आप भी कि हम धोखा दे रहे हैं आपको, आपके परिवार की इज्जत नीलाम कर रहे हैं, इसीलिए अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बंद हो जाते हैं इस चार दीवारी में, सब खुश हो जाएंगे और हमें भी रोज रोज की इस जिल्लत से छुटकारा मिल जाएगा। महीनों से मन में दबा गुब्बार आज बाहर निकला था। उसकी नौकरी ही तो सबसे बड़ी परेशानी थी और ऐसा एक दिन नहीं था जब इससे जुड़े ताने वो नहीं सुनती थी। बाहर जाकर काम करती थी इसलिए हमेशा ये ताना सुनने को मिलता कि घर गृहस्थी में ध्यान नहीं। कितनी ही कोशिशें कर ले पर उसके एफर्ट्स कभी नजर नहीं आते थे, बस कमियां ही दिखती थीं। कोल्हू का बैल बन गई थी, दिन रात घर और बाहर के कामों में उलझी रहती, खुद के लिए जरा भी वक्त नहीं मिलता था, फिर भी कभी शिकायत नहीं करती थी। सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त करती थी और हमेशा बस सबको खुश रखने की, रूपाली जी का दिल जीतने की कोशिश में लगी रहती और बदले में मिलती उनकी बेवजह की नफरत, कड़वी बातें और दिन रात के ताने। इस पर भी उनका मन कहां भरता था, वो तो बस कोशिश में लगी रहती कि कैसे उसे अक्षय के सामने गलत साबित करे, उसकी नजरों में गिराए और उनके रिश्ते में जहर खोले, ताकि उनका बेटा उनकी मुट्ठी में रहे और कई बार अक्षय अपनी माँ की बातों में आकर अपनी पत्नी को अपनी बातों और व्यवहार से चोट पहुंचा देता था, जैसे आज हुआ था। आज भी आहाना उनके कुटिल बुद्धि और षड्यंत्र का शिकार बन चुकी थी, पर शिकायत उसे उनसे नहीं थी, अक्षय से थी। उन बड़ी बड़ी आंखों में नमी में घुली वो शिकायत अक्षय पढ़ चुका था और उसे ना सिर्फ शिद्दत से अपनी गलती पर पछतावा हुआ था बल्कि खुद पर गुस्सा भी आया कि रूपाली जी का व्यवहार और आहाना को जानते हुए वो कैसे उनकी बातों में आकर आहाना के साथ ऐसा व्यवहार कर गया। औजारों से ज्यादा तकलीफ शब्दों से पहुंचती है और उसके कहे वो चंद शब्द आहाना के प्यार भरे नाजुक दिल को भेद गए थे। अनु, आप गलत समझ रही हैं। अक्षय ने सफाई देने के लिए मुंह खोला ही था कि आगे के शब्द उसके गले में अटक कर रह गए जब आहाना के शब्द उसके कानों से टकराए। अगर आपको विश्वास होता तो इस लहजे में आप हमसे ये सवाल कभी नहीं करते। सवाल पूछना आपका हक है, हम भी जवाब देते, पर अफसोस कि आपको हमसे ज्यादा विश्वास मम्मी जी पर है, इसीलिए आपने बिना हमारा पक्ष जाने हमें गुनहगार ठहरा दिया। ये जानते हुए कि मम्मी जी हमें पसंद नहीं करती और जानबूझ पर आपको हमारे खिलाफ भड़काती हैं, आपने आंखें मूंद कर उनकी बातों पर भरोसा कर लिया और चले आए यहाँ हमसे सवाल करने। आज हमें एहसास हो गया कि एक माँ के आगे बीवी का पलड़ा हमेशा हल्का ही रहता है, खून के रिश्ते के आगे शादी के फेरों का कोई वजूद नहीं होता। अगर आपकी माँ चाहे तो आपको हमारे खिलाफ भड़काकर हमें इस घर से बाहर कर दे और आप उन्हें कुछ नहीं कहेंगे, कभी उनके खिलाफ नहीं जाएंगे, क्योंकि वो माँ है आपकी। हम कितना भी कुछ कर लें पर आप वो विश्वास हम पर कभी नहीं कर सकेंगे जो अपनी माँ पर करते हैं। इन शब्दों में उसका दर्द छुपा था, एक शिकायत थी जो उसके मन में टीस बनकर चुभ रही थी, नाराजगी थी जो इतनी बड़ी थी कि आज उसके आगे अक्षय की मोहब्बत छोटी पड़ गई थी। अपनी बात कहकर वो आंसू पोंछते हुए सीधे कमरे से बाहर निकल गई थी। अपने साथ वो अक्षय के शब्दों को भी ले गई थी। वो स्तब्ध सा खड़ा बस उसे खुद से दूर जाते हुए देखता ही रह गया। आहाना नीचे पहुंची तो रूपाली जी को पूरे ठाट बाट के साथ सोफे पर विराजमान पाया। आहाना को देखते ही उनके लबों पर संतुष्टि भरी विजयी मुस्कान फैल गई और आंखों से जैसे उन्होंने बहुत कुछ जता दिया था आहाना को। आहाना भावहीन चेहरे के साथ उनके सामने आकर खड़ी हो गई और तंजिया मुस्कान लबों पर सजाते हुए बोली,
मुबारक हो मम्मी जी, आखिर आप अपने बेटे को हमारे खिलाफ भड़काने में कामयाब रहीं। आज एक माँ के झूठ के आगे बीवी की सच्चाई हार गई, पर हमारी कही बात याद रखिएगा आप। घर पर अपना राज कायम रखने की लालसा में अपने बेटे का बसा बसाया घर उजाड़ रही हैं और इससे नुकसान हमारा नहीं आपका होगा। आप जितना उन्हें हमसे दूर करने की कोशिश करेंगी उतना खुद से दूर पाएंगी, और अगर आपने इस सब को यही नहीं रोका तो वो दिन दूर नहीं जब अपने बेटे को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगी और उसकी वजह हम नहीं होंगे, वो आपकी इन साजिशों से तंग आकर खुद आपको खुद से दूर करेंगे, उस दिन आप पछताती रह जाएंगी। जाने आहाना ने धमकी दी थी, चेतावनी दी थी या उन्हें सच्चाई का आईना दिखाया था, पर रूपाली जी की सारी खुशी पर उसके शब्द ग्रहण बनकर छा चुके थे और आहाना वहां से जा चुकी थी। कमिंग सून।